लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स एवं छोटे नागपुर मिशन की शुरुआत पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोताओ, पिछले कार्यक्रम में हमने नए मिशन सुपीरियर की नियुक्ति एवं फादर लेबन्स को पदभार से मुक्त किए जाने के बारे सुना था। आज हम नए सुपीरियर की कार्यप्रणाली और उसके प्रभाव के बारे सुनेंगे, तो आइए आगे सुनते हैं। फादर हेगनबेक, जो मिशन सुपीरियर फादर ग्रोजा एवं फादर लेबन्स की मिशन पद्धति का विरोध करते थे, अब नए मिशन सुपीरियर फादर बोर्डसन के सलाहकार थे। मिशन की समस्याओं के संबंध में उन दोनों मिशनरियों का एक ही राय था और अब वे दोनों मिशन के अधिकारी भी थे एवं अपने विचारों एवं सिद्धांतों को लागू कर सकते थे। महाधर्माध्यक्ष के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे, क्योंकि महाधर्माध्यक्ष भी मिशन क्षेत्र को विस्तृत करने और उसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने महसूस किया था कि छोटा नागपुर मिशन ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। मिशन के खिलाफ निर्णय नहीं लेने के लिए उन्होंने आवश्यक शक्ति मिशन सुपीरियर फादर ग्रोजा एवं मिशन निदेशक फादर लीवर्स को प्रदान की थी और अपने लिए सिर्फ नए मिशन स्टेशन स्थापित करने का भार लिया था। मार्च 1892 की सभा में महाधर्माध्यक्ष पॉल गोथल्स ने बर्वे में मिशन स्टेशन खोलने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने इसे अविवेकी, खतरनाक और पैसे खर्च करने वाला कार्य कहा, लेकिन आगे कोई विस्तार न करने के सिद्धांत और जो पारित किया गया था उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के बाद उन्होंने अपना विरोध समाप्त कर दिया। उन्होंने फादर बोर्डसन को बारवे में एक नया मिशन स्टेशन खोलने की अनुमति दी। इसके दो दिनों बाद 10 मार्च को फादर कार्डोन, फादर मायने और ब्रदर लेमोइने बेंदोरा गए। महाधर्माध्यक्ष ने बपतिस्मा संस्कार देने की उस संक्षिप्त प्रक्रिया पर भी भविष्य में रोक लगा दी, जिसको मिशनरी समय के अभाव एवं उम्मीदवारों की भारी संख्या होने पर विश्वासियों को प्रदान करते थे। अधिकारियों द्वारा मिशन के विस्तार को रोकने का मकसद था अपने पास जितने संसाधन हों उनसे इस विशाल ख्रिस्त समुदाय को मजबूत करना। इसके लिए उपयुक्त साधन था स्कूल। यद्यपि डेरा में हजारों लोगों को धर्म शिक्षा दी जा चुकी थी, किंतु वयस्कों को बहुत कम निर्देश मिले थे और वे नाम मात्र के ख्रिस्तों के समान थे। प्रचारकों को भी पर्याप्त ज्ञान नहीं मिला था। स्कूल ही नई पीढ़ी को तैयार कर सकता था ताकि वे विश्वास में सुदृढ़ हो सके। मिशनरियों ने महाधर्माध्यक्ष से हरेक मिशन स्टेशन के लिए बोर्डिंग स्कूल की मांग की। प्राथमिक स्कूलों की देखरेख प्रचारक एवं कुछ अप्रशिक्षित शिक्षक करते थे। फादर लीबन्स ने भी स्कूल स्थापित करने पर हमेशा जोर दिया था, किंतु व्यक्ति की कमी, वित्त राशि का अभाव एवं अपनी ओर से समय नहीं दे पाने के कारण स्कूलों को दयनीय स्थिति में रखा गया था। कुछ मिशन स्टेशनों में फादरों के आवास के साथ छोटा स्कूल जोड़ दिया गया था और रांची के सेंट जॉन्स बोर्डिंग स्कूल में करीब 200 बच्चे पढ़ रहे थे। मिशनरियों ने बोर्डिंग स्कूल में बहुत अधिक पैसे खर्च किए, किंतु उन्होंने पाया कि यह व्यर्थ नहीं था बल्कि अच्छा परिणाम दिखाई पड़ रहा था। महाधा मदश गोतल्स इसके लिए कभी उत्साहित नहीं थे, किंतु मार्च की बैठक में सहमत हुए कि हर मिशन स्टेशन में एक बोर्डिंग स्कूल खोला जाए। फादर लेबन्स ने भी स्कूलों को व्यवस्थित रखने की कोशिश की थी, किंतु अधिकारियों से अधिक समर्थन नहीं मिलने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए थे। उनके समय में लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मिशन की ओर आकर्षित हुए थे, यह उस समय के लिए उपयुक्त प्रेरिताएं थी। मार्च 1892 की सभा में विचार किया गया कि भविष्य में मिशनरी न्याय के मामलों में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। दूसरी ओर लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए फादरों के पास आते रहे एवं ख्रिस्त समुदाय में शामिल किए जाने का आग्रह भी करते रहे। जीने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की मदद से इनकार करना उनके लिए अस्वीकार किए जाने के समान था। फिर भी अधिकारियों ने लोगों को दी जाने वाली मदद में कटौती की। जब कभी लोग कार्तिक कलीसिया में प्रवेश करने की मांग करते थे तो उन्हें समझाया जाता था कि उन्हें सच्चे विश्वास को अपनाना होगा। जब लोग जमींदारों से परेशान होते थे तब भी मिशनरियों को इसकी अनुमति नहीं थी कि वे लोगों को आर्थिक मदद देने का वादा करें। न तो प्रचारक उनकी मदद कर सकते थे और न ही कोई मिशनरी उनके बीच जा सकते थे। परिणामतः कैथोलिक धर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया रुक गई। जब मिशनरियों की ओर से लोगों की मदद नहीं करने की खबर फैली तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, न केवल उन लोगों पर जो मिशन में भर्ती होना चाहते थे बल्कि उन लोगों पर भी जो पहले से कलीसिया के सदस्य थे। इस तरह बहुत सारे विश्वासियों ने कलीसिया से अपने आप को अलग कर लिया। उधर शारीरिक रूप से दुर्बल मानसिक रूप से घायल फादर लेबन्स कुछ और महीनों तक अपने कार्यों को ध्वस्त होते देखे। मार्च की सभा के बाद फादर लेबन्स मनरेसा हाउस समुदाय के एक साधारण सदस्य रह गए थे। वे अब भी अपना कुछ समय मुकदमों में लगाते थे पर यह बहुत कम था। वे पहले की तरह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। मिशन के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना अब कल्पना के परे था। इसके लिए उन्हें कोई अधिकार नहीं था और बीमारी के कारण उनका शरीर भी इस काम के लायक नहीं था। वे अपना समय डेरा में आने वाले लोगों की मदद करने और उन्हें मार्गदर्शन देने में व्यतीत करते थे। न्याय दिलाने के कार्यों में रोक लोगों को भले ही आकर्षित नहीं कर रहा था किंतु डेरा में उनकी उपस्थिति से ख्रिस्तों को बल मिल रहा था। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं चट्टनागपुर मिशन की शुरुआत पर चर्चा सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक धीरज। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, जीवन अनुभवों से बनता है। जीवन में हार जीत, दुख सुख, गिरने उठने का चक्र चलता ही रहता है और यही जीवन है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में धैर्य रखना सीख लिया तो समझो उसका जीवन सफल हो गया। आइए सबसे पहले हम धीरज का अर्थ समझते हैं। धीरज का मतलब है किसी भी विपरीत परिस्थिति और संकट के समय उतावला न होना। अक्सर हम संकट की स्थिति में घबरा जाते हैं और समस्याओं से भागने लगते हैं, पर ऐसी स्थिति में धीरज रखकर उनका सामना करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। जीवन में हमेशा अनुकूल माहौल नहीं रहता और अनिश्चितता बनी रहती है। धीरज न हो तो मनुष्य टूट जाता है। अक्सर कठिन परिश्रम के बावजूद मन चाही सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में निराशा और हताश होने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि धीरज के साथ और प्रयत्न करना चाहिए। माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को असफलता के अनुभव से सीखने और चुनौतियों का सामना धीरज के साथ करने के लिए प्रेरित करें। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका धीरज।
और समीर भैया, कहाँ की तैयारी है?
क्यों,
बड़े बने ठने हो?
ये जरूरी नहीं है कि मैं बना ठना हूँ तो कहीं जाना ही है। क्या आदमी ऐसे भी तैयार नहीं हो सकता?
क्यों नहीं, हो तो सकता है, जरूर तैयार हो सकता है, लेकिन बिना मतलब के वो तैयार होकर करेगा भी क्या?
हाँ, ये बात तूने सही कही है कि बिना बात आदमी तैयार होकर करेगा भी क्या।
या फिर हो सकता है कि तुमसे मिलने कोई घर पर ही आ रहा हो, मेरा मतलब आ रही हो।
क्या बकवास है, मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ता।
तो फिर इतना तैयार होने का मतलब ही क्या है?
ये भी जरूरी तो नहीं कोमल कि मतलब से ही तैयार हुआ जाए, शौक से भी तो तैयार हुआ जा सकता है।
क्यों नहीं, तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा भैया, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं?
पेपर तो सब अच्छे हुए हैं, एलिमेंट्री ऑफ कॉमर्स को छोड़ के।
क्यों, तुम्हारी तैयारी तो बहुत अच्छी थी।
तैयारी अच्छी होने से क्या होता है कोमल, जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो आदमी सब चौकड़ी भूल जाता है और उसकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है।
मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है।
मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने समझना ही छोड़ दिया और समझाना भी।
वो क्यों भैया?
वो क्यों भैया क्या क्या मतलब है, जब अपने को अपना रिजल्ट पता ही हो तो रिजल्ट का वेट क्या करना।
अरे समीर भैया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो?
तो फिर तू ही बता दे कोमल, मैं कैसी बात करूं?
तुम तो एकदम निराशावादी बातें करने लगे हो। अरे जरा धीरज तो रखो समीर भैया।
धीरज रखने से क्या होगा, क्या रिजल्ट बदल जाएगा, कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा?
बिल्कुल, धीरज धरने वालों के साथ चमत्कार ही हुआ करते हैं भैया। कभी जरा धीरज धर के तो देखो तुम।
धीरज धरने वाले वे लोग होते हैं जो अपने साथ कुछ भी होता हुआ बड़ी मजबूरी से देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते।
धीरज रखने वालों को तुम ऐसा समझते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है भैया। मुझसे सुनो, धीरज रखने वाले बड़े ही शांत और समझदार होते हैं।
वाह।
और एक तरह से तुम उन्हें जोखिम लेने वाले और आत्मविश्वासी भी कह सकते हो, क्योंकि वे अपने साथ कुछ भी घटता हुआ देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
तुम्हारा मतलब जो अपने पक्ष में परिणाम करने के लिए हाथ पांव मारते हैं, तुम उन्हें हिम्मती नहीं समझती?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई बार हाथ पांव मारने के बावजूद भी वे परिणाम अपने पक्ष में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसों को हिम्मती नहीं एक दांव खेलने वाला भी कहा जा सकता है भैया।
और कभी कभी हाथ पांव मारने वाले परिणाम को अपने पक्ष में कर भी लेते हैं, जबकि धीरज धरने वाले टापते रह जाते हैं। पता है तुम्हें, धीरज धरने वालों और नहीं धरने वालों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है।
वो क्या भैया?
यही कि धीरज धरने वाले अपना काम करके सब कुछ यानी कि उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़कर बैठ जाते हैं, आराम से हाथ पे हाथ रख के, धीरज के पर्दे की आड़ में। लेकिन धीरज न रखने वाले अपना काम करने के बाद भी अपना परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए हाथ पांव मारते रहते हैं।
वही तो कह रहे हूँ भैया कि हाथ पांव मारे बिना धीरज का फल अपने हक में परिणाम ले आता है, वही अक्सर हाथ पांव मारने के बाद भी परिणाम नकारात्मक ही रहता है।
मैं तो नहीं मानता।
तुम मत मानो, लेकिन इतनी देर से तुम ये ढूंढ क्या रहे हो?
कुछ नहीं।
अरे बताओ भी भैया, क्या ढूंढ रहे हो?
अपनी एक बुक ढूंढ रहा हूँ।
कौन सी बुक?
कंप्यूटर की।
सब दूर अच्छी तरह से देख लिया तुमने?
अब तुम्हारे सामने ही तो कब से देख रहा हूँ, अगर यहाँ हो तो मिले ना।
वो देखो वो उस किताब के नीचे क्या है, मुझे तो तुम्हारी बुक ही लग रही है भैया।
देख लेता हूँ उसे भी। अरे हाँ, ये तो मेरी ही किताब है। देखो मैंने यहाँ भी सब कुछ देख लिया था, लेकिन उस समय तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखी थी।
शांति धीरज और एकाग्रता से ढूंढो तब ना, तो ये जरूरी मिल जाती, लेकिन आप तो अपना धीरज खोकर लगे थे हड़बड़ाहट में इधर उधर ढूंढने।
चलो मिल तो गई।
ये कोई तुम्हारी हड़बड़ाहट से ढूंढने पर नहीं मिली है भैया, हड़बड़ाहट से ढूंढते रहते ना तो अभी भी तुम्हारी खोज चलती ही रहती। वो तो मेरे बताने से मिली है, जबकि सामने ही पड़ी थी भैया। इसलिए कहती हूँ भैया, और मम्मी पापा भी यही कहते हैं कि धीरज रखो, मगर तुम मानो तब ना।
ये धीरज वीरज रखना अपने बस का नहीं है, यहाँ तो फटाफट रिजल्ट चाहिए अपने को।
फिर तो मैंने तुम्हारी बुक बताकर गलती की, मुझे बताना ही नहीं था।
तो क्या तू नहीं बताती तो शाम तक, और नहीं तो कभी तो मिली जाती।
कभी तो मिल जाती, लेकिन अभी तो नहीं मिलती ना भैया, क्योंकि धीरज न रखने वालों की नजर हड़बड़ाहट में अंधी हो जाती है।
अब तू कुछ भी बोल कोमल, अपने को तो अपनी किताब मिल गई है, बस पेपर बिगड़ने से दिमाग थोड़ा खराब है। मम्मी को बोलना आता हूँ अभी।
समीर कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है।
क्या पता, अभी तो यहीं था, कहीं बाहर होगा,
नहीं
पड़ोस वगैरह में।
नहीं नहीं मम्मी, भैया कंप्यूटर बुक लेकर कहीं गया हुआ है, मुझसे कह रहा था कि मम्मी से कहना अभी आता हूँ।
मगर उसकी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है।
या तो कहीं पास में ही गया होगा, या फिर पैदल कहीं गया होगा। दरअसल उसका एलिमेंट्री ऑफ कॉमर्स का पेपर बिगड़ गया है, इसलिए उसका दिमाग ठीक नहीं है।
लो तो इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है, पेपर बिगड़ना था सो बिगड़ गया, और अब तो जो होना है वो रिजल्ट होगा।
आप तो जानते ही हैं, उसको धीरज रखना आता ही कहाँ है।
समीर भैया के साथ यही एक प्रॉब्लम है।
तो क्या उसके दिमाग खराब करने से क्या उसका रिजल्ट बदल जाएगा?
मैंने भी यही कहा था पापा, लेकिन भैया मुझे अपनी बात समझाने लगा।
क्या बात है मम्मी पापा, कोमल तीनों जमा है, क्या मीटिंग हो रही है?
मीटिंग ये हो रही है, अगर तुम्हारा एलिमेंट्री ऑफ कॉमर्स का पेपर बिगड़ गया है तो धीरज रखो, जरूरी नहीं कि तुम फेल हो जाओ, तुम्हें पासिंग मार्क्स तो मिल ही सकते हैं।
किसको पता पापा?
समीर तुम्हें पता है, अगर नदी से साफ पानी पीना हो तो धीरज रखना पड़ता है, जब तक उस पानी की गंदगी और कचरा उसके तल में नहीं बैठ जाता। वरना अगर तुम हाथ से पानी के कचरे को साफ करने की कोशिश करोगे तो पानी का कचरा नीचे तल में नहीं बैठेगा बल्कि ऊपर ही आता जाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि हम धीरज के साथ बैठें और कचरा तल में जमने और पानी साफ होने का इंतजार करें।
यस पापा, सुना भैया?
सुन लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या बुराई है, करके देख लेता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, पापा।
क्या बात है बेटा?
मैं पास हो गया मम्मी, मैं पास हो गया।
ये तो तूने बहुत बढ़िया खबर सुनाई है बेटा।
क्या हुआ भैया, रिजल्ट क्या हुआ?
पास हो गया हूँ।
बधाई हो बेटा, ये सब तुम्हारे धीरज का फल है, पता है तुम्हें?
हाँ पापा, आपका कहना सही था।
इसीलिए जो बच्चे एक बार में फेल हो जाते हैं उन्हें धीरज से काम लेना चाहिए, अपनी गलतियों से सबक लेकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये कि आत्महत्या वगैरह जैसे गलत काम करने लगे।
बिल्कुल सही मम्मी, बिल्कुल सही।
धीरज के साथ परिस्थिति का सामना करना चाहिए, और विजय भी उसी की होती है जो धीरज से काम लेता है।
बिल्कुल, हमारे समीर को भी उसके धीरज रखने का फल मिला। सचमुच में हर एक इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि धीरज के सामने बड़े बड़े संकट भी बादलों की तरह उड़ जाते हैं।
यस पापा।
धीरज, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटिका के कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, पल्लवी बेंद्रे, राज बेंद्रे और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।